परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हुए पद्म पुराण के कथा प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि का वो आश्रम जहां घोड़ा पहुंचता है और घोड़े के पहुंचते ही वहां कुछ ऋषि कुमार खेल रहे हैं। जैसे आश्रमों में ऋषि मुनियों के बच्चे खेलते हैं, उसी तरह से वहां भी कुछ ऋषि कुमार खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। वाल्मीकि के आश्रम में प्रातः काल का समय है, मुनि लोग होम करते हैं तो उसकी सुगंधी चारों तरफ बिखर रही है। सुनने वाले को जो प्रविचरति धूमो मुनि वनम, जो मुनि ऋषि लोग हवन करते हैं उस समय हवन की जो होम की पवित्र अग्नि के धूम है, शाकल इत्यादि जब जलते हैं तो इतनी सुंदर गंध आती है। जब नारियल का होम डालते हैं तो नारियल की जो सुगंध है इतनी सुंदर अग्नि के साथ चारों तरफ फैल रही है कि लोगों का मन जो है प्रसन्न हो जा रहा है। देव तत्व चारों तरफ बिखरा पड़ा है, जो सुरभि गंध है वह लोगों के मन को मोहित कर रहा है। और ये तो भारतवर्ष है, मलय की गंध से माती सरस हर सांस आती है। जहां सुंदर सुंदर हवाएं बहती हो और ऋषियों का यज्ञ होता हो फिर उसकी चर्चा क्या करनी है। उसी बीच में वहां घोड़ा पहुंचता है अश्वमेध का। जब सब लोग देखते हैं, बालक लोग, कितना सुंदर घोड़ा है, ऐसा तो कभी देखा ही नहीं था, नयन रम्य, भला जंगल में घोड़ा भी मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। और बच्चों को यदि घोड़ा मिल जाए तो कितना कुतूहल का विषय होगा। और उसमें भी जब साज सजाया हो, अश्वमेध का घोड़ा जब चारों तरफ से अलंकृत है, उस पर वो ललाट पे सब लगाया गया है, इधर फूल इत्यादि सब है, सजा हुआ घोड़ा है, वह देख करके किसका न मन मुग्ध हो जाएगा। जो ऋषि कुमार थे, अब आप कहेंगे कि ये ऋषि कुमार वहां इतने कहां से आ गए। तो एक एक जो ऋषि होते थे अपने, उनके अंदर कितने अध्यापक और ब्रह्मचारी रह करके वहां आश्रमों में निवास करते थे, ज्ञान लेते थे। क्योंकि पहले जो अपने आश्रम हुआ करते थे, ऐसे पाठशालाएं विद्यालय ऐसे नहीं होते थे, गुरुकुल होता था। तो गुरुकुल में ऋषि कुमार प्रातः काल में इधर उधर भ्रमण करते थे, कोई पुष्प के लिए जा रहा है, कोई खेल रहा है, ऐसी स्थिति थी। इसलिए वो कुलपति कहलाते थे, संपूर्ण विद्या कुल के पति थे वो। जैसे यहाँ कुलपति है महाराज श्री, संपूर्ण विद्या कुल का संचालन होता है, कई कई छात्रालय हैं और कुछ जीवन की पाठशालाएं हैं, उसमें भी लोग यहाँ कार्य करते हैं। वैसे वहां विद्या कुल के पति और सबका सत्संग, वृद्धों का, ये आश्रमों में हुआ करता था, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम ही रहे होंगे। फिर उनसे ऋषि कुमार, क्योंकि वृद्धों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पिशेविना, तो वो सब कुमार, किसी के घर का बालक उसी का संस्कृत हो सकता है जिसके यहाँ वृद्ध हो। और बना बनाया माल को घर से बाहर करोगे तो आपको आपका बच्चा बाहर कर देगा, ये ऋषि परंपरा है। क्योंकि वो जो देखता है वही करता है। सामान्य चुटकिले में यदि केला बच्चे को खाते समय गिर जाता है तो वो कहता है, उठाने जाता है तो माँ कहती है बेटा फेंक दो, क्यों, तो नीचे गिर गया है। आगे जाकर के पिताजी का पांव फिसलता है तो कह रहा है माँ छोड़ दो, क्यों, तो पिताजी गिर गए, बाजार से दूसरा ले लेंगे। तो यदि सामान्य छोटी छोटी सी बातों को लेकर के यदि ऐसा होता हो, क्यों, अतो यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ लोगों का व्यवहार होता है उसी को देख करके बच्चे अनुकरण करते हैं। देखते हैं कि हमारे माताजी को दादाजी पसंद नहीं आ रहे हैं, तो वो संस्कार उसके दिमाग में बैठ जाता है, क्योंकि बाल्यकाल के जो संस्कार होते हैं ना वो दिमागों में ऐसे बैठ जाते हैं। और फिर कोई घर में ऐसी घटना हो, क्योंकि युवा अवस्था में होता क्या है, भोगों में मन रहता है, इसलिए वृद्ध जो है लगते हैं कि भाई ये घर के जो है हमारे बाधक हो गए हैं, जब न तब हमको उपदेश दिया करते हैं, इनका उपदेश कौन सुनेगा, इनको भेजो वानप्रस्थ आश्रम में, कहीं जाए पानखर की हास में जाए उधर। तो वो जब बच्चा देखता है तो हमारे लिए भी वही हमारा नींव डल जाता है, फिर जब वो बड़ा होता है तो हमको भी किनारे करता है। इसलिए हमेशा वृद्धों को रखना चाहिए घर में, क्योंकि वो वृद्ध जो है छोटे छोटे बालकों को तैयार करेंगे, अनुभवी होते हैं, ज्ञान वृद्ध होते हैं। तो वहां ऋषियों के सन्निधान में बालक लोग भी तैयार हो रहे हैं। का जहां लड़कों का संग वहां बाजे मृदंग, जहां बूढ़ों का संग वहां खर्चे का तंग। जहां छोटे बच्चों का संग होता है वहां मृदंग बजता है, खूब खेलते लगते हैं। मधुरहम बच्चों का संसार, हमारे बच्चों का संसार कैसा है। जहां हृदय में लेश नहीं है, तनिक पाप का द्वेष नहीं है, हृदय हृदय में फैल रहा है केवल ममता प्यार। थोड़ी देर के लिए झगड़ेगा फिर उसी के पास जाएगा, क्योंकि बाल बुद्धि है। और हम गांठ बांध लेते हैं कि नहीं इसको तो अब बताएंगे नहीं, तब तक इससे किनारे नहीं होगा। तो जो बच्चे हैं वो वास्तव में दिल के सच्चे हैं, और उन बच्चों को जो सच्चाई के तरफ प्रेरित कर सकते हैं, तो अपने जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, वृद्धाश्रम के जो लोग हैं, वही असली दिशा दे सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन का कुछ अपना अनुभव है। इसलिए अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इन वृद्धों को हमेशा सत्कार करके रखना चाहिए। और ज्ञान वृद्ध इधर ऋषियों की परंपरा में जो बालक खेल रहे हैं, वह जाकर कहते हैं लवकुश से कि अरे भैया, लव भैया देखो कितना सुंदर घोड़ा आया है, ऐसा तो हमने देखा नहीं, चलो चलो देखते हैं। सब बालक स्वाभाविक रूप से वहां पहुंच जाते हैं। लव से ने कहा इसके पढ़ो तो सिर के ऊपर क्या लगा हुआ है, तो सिर के ऊपर जो उसके बोर्ड लगे हुए हैं कि राम का घोड़ा है, अश्वमेध का घोड़ा है, ऐसा देख करके वो बच्चे उसको पढ़ के बताते हैं, भैया देखो यहाँ राम लिखा है, राम राजा यज्ञ कर रहे हैं, क्षत्रिय हैं, उनके साथ युद्ध होगा, क्या बात है। सिंह का बच्चा हो और कहे कि युद्ध होगा तो कहेगा कि पहले हम करेंगे। तो लोग उसको महर्षि से विद्या सीखे थे सर प्रकार की, इसलिए उनके मन में आता है कि ओहो आज हमारा क्षत्रियत्व दीपित हो, का कम से कम हमको युद्ध करने का अवसर मिलेगा, इसलिए घोड़े को ले चलते हैं, देखते हैं कौन है जो आता है हमारे सामने। आदमी जवानी में होता है, किशोरावस्था में होता है, तो उस समय और नई नई विद्या सीखा हो तो प्रयोग करने के लिए इच्छा भी होती है, इसलिए ले जाकर के घोड़े को बांध दिया। वैसे ही उधर से कुछ सेवक आए और कहे कि अश्वमेध के घोड़े को यहां किसने बांधा। कहते हैं कि घोड़ा हमने बांधा है, बोलो क्या कहना चाहते हो, कहा क्यों घोड़े को बांध लिया, पता नहीं तुमको यह अश्वमेध का घोड़ा है। बच्चों ने कहा आपको पता नहीं कि यह किसका आश्रम है। तो कहा कि अरे भाई इंद्र इत्यादि देवता भी जिस भगवान रामचंद्र के नाम को सुन करके अपनी पराजय स्वीकार करते हैं, इंद्रादि देवताओं तो रावण से हैरान थे लेकिन भगवान ने उनका तारण किया, आपको पता है आप किसका घोड़ा पकड़े हो। उन्होंने कहा कि हम भी कोई ब्राह्मण बालक नहीं है। कहा क्या बात है, लेकिन ब्राह्मण के जो बालक थे उन्होंने कहा भैया ये घोड़ा मत पकड़ो, ये भगवान का घोड़ा है, ऐसा नहीं करते हैं। क्षत्रिय कुमार थे, उन्होंने कहा कि भाई ब्राह्मण का घोड़ा हो, जाओ ब्राह्मणों लड्डू खाओ, ये तुम्हारा विषय नहीं है। है ना, कहा धरती के जो प्राणी है ना उसमें ब्राह्मणों को लड्डू बहुत प्रिय है, ब्राह्मणों मोदक प्रिय, अलंकार प्रियो विष्णु, भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है, खूब बढ़िया सुंदर सजाइए बजाइए भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पुष्प की माला पहनाइए, कौस्तुभ मणि पहनाइए, शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित हरि होते हैं। अलंकार प्रियो विष्णु जलधारा प्रिय शिव, शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, कहते हैं कि हमारे भगवान नारायण जल में ही रहते, हमारे ऊपर चढ़ा दो हर हर बम बम, खुश हो जाते हैं। जलधारा प्रिय शिव नमस्कार प्रियो भानु, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है क्योंकि वो इतने तेजस्वी है, नमस्कार कोई कर लेता है शरणागति आ जाता है तो प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए सूर्य नमस्कार का विधान है। आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेशु दारिद्र्यम नोपजायते, दरिद्रता नहीं होती है, संतति की भी प्राप्ति होती है, रोग भी शांत होते हैं, मतलब आदित्यात् किम न साध्यते, आदित्य से क्या नहीं मिलता है जो संपूर्ण देवताओं के प्रतिनिधि भूत है, साक्षात कलयुग में देवता है तो आदित्य सूर्य नारायण है। और सूर्य वंश का फिर यदि बात हो तो वहां का कुमार कैसा होगा, क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्प विषयामति, कहां सूर्य वंश और कहां कालिदास महाराज कह रहे हैं कि हमारी अल्पमति, उसी तरह से हमारी भी दशा होती है, कभी कभी हमारी गाड़ी रुक जाती है, क्या करें इसको कैसे प्रतिपादित करें, ये सब सारी चीजें होती है। कहते हैं कि कहीं मैं बौना न बन जाऊं, बौना मतलब छोटा नाटा ठिंगड़ा, कहीं फल के लोभ में ऊंचा ऐसे कूदता है तो वैसे कहीं हमको फल न प्राप्ति होगी तो हमें उसे हास्यास्पद मैं हो जाऊंगा, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, ऐसे कालिदास जैसे कवि डर रहे हैं। उनके चरित्र को, सूर्य वंश के चरित्र को, जो जिसमें भगवान राम अवतरित हुए हैं उस चरित्र को कहने में, जहां का बालक सामान्य नहीं, और फिर यदि वह ऋषि कुल में रहा हो, ऋषि परंपरा में पलित हुआ हो, राजकुल में पलता तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ आलस्य प्रमाद हो जाता, क्योंकि जब सुख होता है ना तो व्यक्ति कार्य नहीं करता है, और जब दुख होता है तो व्यक्ति कार्य करता है, क्योंकि उसे अपने दुख याद रहते हैं कि हमें कहां जाना है, हमें क्यों दुख हो रहा है, इसलिए जो दुख के दिन है उसी में असली निर्माण होता है। तो उनकी माता चूंकि आश्रम में थी इसलिए इन बच्चों को पता था, इसलिए बड़ी अच्छी सी विद्या ग्रहण किया था। ये संवाद परस्पर चल रहा है, यम कह रहे हैं कि तुमको यमराज भी नहीं बचाएगा, कहा कि यमराज कौन होता है, उसको भी यहां आने के लिए ऋषि कुल है पहले आज्ञा लेना पड़ेगा, क्योंकि यमराज से वही डरता है जो आलसी होता है, उसके शरीर में रोग होते हैं, यमराज से वही डरता है जिसमें अन्न दोष होता है, दूषित अन्न खाता है तो रोगी होता है, यमराज से वह डरता है जो वेदादि